മോക്ഷമാർഗസ്യനീതാരം ഭിത്താരം കർമ്മഭൂഭൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധൈ. ആഹുക്താൽ ലൗകാന്തികാസ് തതശ്ചിത്വാ ഏകം ഗർഭാവാസമവാപ്യ നിർവാസ്യന്തിയുക്താ. बोले कि लौकांतिक देव आप बतला चुके हैं, वहाँ से आकर एक गर्भ अवस्था को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे वो सारे लौकांतिक. तो किम एवं अन्येपि निर्वाण प्राप्ति काल विभागो विद्यते. क्या ऐसा और देवों में भी कोई ऐसा नियम है क्या निर्वाण प्राप्ति संबंधी? इति अत आह, इसलिए आचार्य कहते हैं विजयादुष द्विचर्मा. विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि. सर्वार्थ सिद्धि को अभी यहाँ नहीं लिया है. विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित इन चार विमानों को लिया है और नौ अनुदिश विमानों को भी लेना है. इसमें आदि शब्द में नौ अनुदिश विमान को भी लेना है और विजयादिक को भी लेना है. तो ये पांच अनुत्तर में से एक सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ दें, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले द्विचरम नहीं होते हैं, वो एक चरम होते हैं. यानी एक ही बार भव लेकर के मोक्ष जाते हैं, जैसे लौकांतिक हैं. सर्वार्थ सिद्धि के देव भी एक जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं, एक भवावतारी कहते हैं उनको. लेकिन ये जो विजयादिक के देव हैं, नौ अनुदिश और चार अनुत्तर, यहां के जो देव हैं ये द्विचरम होते हैं. आदि शब्द प्रकारार्थे वर्तते तेन विजय, वैजयंत, जयंता, पराजिता नुदिश विमानानाम इष्टानाम ग्रहणम सिद्धम भवति. बस इतना ग्रहण कर ले, नौ और चार, ये जो तेरह विमान है, नौ अनुदेश विमान, चार अनुत्तर विमान, इनको ही ग्रहण करना. का पुनरत्त प्रकार है? प्रकार क्या है इसमें भेद? अहमिंद्रत्वे सति सम्यक दृष्ट्युपपाद, सम्यक दृष्ट्युपपाद. अहमिंद्रपना होने पर सम्यक दृष्टियों का ही इसमें उपपाद होता है. सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग इति चेत न तेषां परमोत्कृष्टत्वात्. सर्वार्थ सिद्धि का प्रसंग नहीं है क्योंकि वो परम उत्कृष्ट है. अनवर्थ संज्ञात एक चरमत्व सिद्धे है. और सर्वार्थ सिद्धि ये नाम है, बिल्कुल सार्थक नाम है, इसलिए वो एक चरमत्व सिद्धि में एक बार जन्म लेकर के मोक्ष ले जाते हैं. चरमत्वम देहस्य, चरमपना जो होता है वो शरीर संबंधी होता है. मनुष्य भवापेक्षा, मनुष्य भवापेक्षा द्वौ चरमौ देहो ये शांति चुद्य चरमा. मनुष्य भव की अपेक्षा दो अंतिम देह जिनके रह जाते हैं वे द्विचरम है. कैसे? तो विजयादिभ्यश्च्युता, विजयादिक से छूटकर आप प्रतिपतित सम्यक्त्वा, सम्यक से पतित न होते हुए मनुष्येषु उत्पद्य, मनुष्यों में उत्पन्न होकर संयम आराध्य, संयम की आराधना करके पुनर्विजयादिश विजयादिशोत्पद्य वापस वहां पर उत्पन्न होकर ततश्च्युता पुनर्मनुष्य भवमवाप्य सिद्ध्यन्ति द्विचरम देह इति द्विचरम देहत्वम. तो ये हुआ कि जो भी वहां चले गए विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित विमानों में, तो वहां से नीचे वापस आएंगे, मनुष्य बनेंगे, फिर मुनि होकर वापस वहां जाएंगे और फिर मनुष्य बनकर मोक्ष जाएंगे. तो ऐसे दो मनुष्य भव धारण करते हैं. द्विचर्म तो वो भव की अपेक्षा नहीं है, मनुष्य भव की अपेक्षा है. तो नेमिनाथ भगवान मल्लिनाथ भगवान, ऐसे कम से कम 12 तीर्थंकर, पूरे 12 तीर्थंकर वहां से आए थे, अहमेंद्र पद से, कुछ ग्रेवेक से आए थे, कुछ अनुत्तरों से आए थे और कुछ सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। सर्वार्थ सिद्धि से आने वालों के बारे में दो मान्यता है, एक तो आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, फिर कुंथुनाथ भगवान के बारे में भी कहते हैं कि वो भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। अब ये द्विचरम के विषय में धवला में एक दूसरा भंग भी आता है। द्विचरम का मतलब होता है कि जैसे जो वहां आ गए अनुत्तर विमानों में और अनुदिश विमानों में, वो वहां पर दो ही बार आ सकते हैं, वहां तीन बार कोई नहीं जा, कोई भी नहीं जा सकता। ऐसा भी एक इस पे व्याख्यान उपलब्ध होता है कि दो बार, फिर यहां नीचे दूसरे स्वर्गों में जा सकते हैं, ऐसा एक विकल्प दिया है उसमें। जैसे अनुत्तर विमानों में जाने का, कोई जीव अनुत्तर विमान में हेमेंद्र पद को प्राप्त हुए, फिर दोबारा हेमेंद्र पद को प्राप्त करने में कितना अंतराल हो सकता है समय का, तो उसका उत्तर दिया दो सागर, लगभग दो सागर का अंतराल हो सकता है। वो कैसे संभव है, साधिक दो सागर बोल रहे हैं, तो उसका उत्तर दिया कि वो ऐसे संभव है कि वहां से आकर मनुष्य बने, और ये नियम है कि अनुत्तर और अनुदिश से मनुष्य बनने वाले मुनि दीक्षा लेते ही हैं, इसमें कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, वो नियम से मुनि दीक्षा लेते हैं, तो मुनि दीक्षा ली, पर किसी कर्म संयोग से उनको सौधर्म स्वर्ग में जाना पड़ा, तो सौधर्म स्वर्ग से आकर फिर मनुष्य बने, और फिर मनुष्य बनकर तपस्या करके वहां चले गए वापस अनुत्तर अनुदिशों में, और फिर वहां से आकर मोक्ष चले गए। ऐसा भी एक भंग धवल ग्रंथ में आता है। तो दोनों प्रकार के अपन मतों का संग्रह करते हैं। एक तो यहां पर सीधा ये लिखा है, तत्वार्थ परंपरा के अनुसार तो विजय आदि विमानों से नीचे आकर मनुष्य बनते हैं, फिर मनुष्य से दूसरी बार फिर से वहां मनुष्य जाकर अहमेंद्र बनते हैं, और फिर नीचे आकर मनुष्य होकर मोक्ष जाते हैं। पर ये बीच में सौधर्म स्वर्ग वाला जो विकल्प है ये धवला में आता है। इसमें तो सागर नहीं हो सकता, इसमें तो बहुत जो संख्यात वर्ष होती है मनुष्य की आयु, एक पूर्व कोटि से ऊपर नहीं हो सकता अंतराल, अधिकतम अंतराल एक पूर्व कोटि बनेगा इसमें। अब जीव के औदयिक भावों में गतियों का वर्णन था, तो उन गतियों के वर्णन में चार गतियां थी, चार गतियों में एक तिर्यक गति थी, और फिर इधर तीसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में जो आयु बताई थी कि मनुष्यों की आयु कितनी होती है और तिर्यंचों की कितनी होती है, तो नृस्थिति परावरे त्रिपल्य उपमांतर मुहूर्ते तिर्यक योनिज अंश, तो ये यहाँ पर तिर्यक योनिज की बात आई थी। तत्र न ज्ञायते के तिर्यक योनय, तो ये जानने में नहीं आता कि तिर्यक योनि क्या वस्तु है और तिर्यक योनि वाले कौन से जीव है, इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर आचार्य द्वारा कहा जाता है औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास तिर्यक योनय। औपपादिक और मनुष्य, इनसे जो शेष बच जाते हैं, औपपादिक में देवनारक और मनुष्य में मनुष्य, इनसे जो शेष है वे तिर्यक योनय है, तिर्यक योनि वाले हैं। कितना छोटा सा सूत्र और एकदम सब समाधान हो गया एक झटके में। फिर अब आयु की चर्चा करते हैं। स्थित असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्द ही निमिता। अब सबसे पहले भवनवासियों की चर्चा है आयु की, तो बोलते हैं कि स्थिति ही, स्थिति यानी वहां पर कब तक उस जीवन में रहेंगे वो स्थिति कहलाती है। असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम, ये क्रम से कुछ नाम दिए और फिर शेष करके बाकी को ले लिया, क्योंकि 10 भेद है भवनवासियों के। बोले सागरोपम, असुर कुमारों की आयु कितनी है? सागरूपम। फिर नाग कुमारों की कितनी है? त्रिपल्लुपम। फिर सुपर्ण कुमारों की उनसे आधी है, द्वीप कुमारों की उनसे आधी है, बस फिर बाकी सबकी बराबर है। अब देखिए कैसे हैं, बताते हैं। असुरादी नाम सागरूपमादिभिर यथा क्रम अत्र अभिसंबंधो वेदितव्य है। असुर आदिक जो सूत्र में शब्द आए हैं उनका सागरूपम आदिक के साथ क्रम से अभिसंबंध जान लेना। इयं स्थिति उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट स्थिति है ये याद रखना, यानी अधिकतम इतनी आयु होती है उनकी। जगन्याप्युत्तरत्र वक्ष्यते, जगन स्थिति आगे कहेंगे। तद्यथा, वो इस प्रकार है। असुराणां सागरूपम स्थिति ही, असुरों की स्थिति कितनी है? एक सागरूपम। भारी स्थिति है, समझ लो कि सौधर्म स्वर्ग में देवों की स्थिति दो सागरूपम होती है, तो उनसे आधी है असुरों की। यानी समझ लो भवनत्रिक में सबसे अधिक आयु असुर कुमारों की है। नागानां त्रिपल्लोपमा स्थिति ही, नाग कुमारों की जो आयु है वो तीन पल्लोपम के बराबर है। सुपर्णानाम अर्ध तृतीयानि द्वीपानाम द्वे, और सुपर्ण कुमारों की उससे आधी कम कर लो तो ढाई पल्लोपम की। ढाई मीन्स टू एंड हाफ। और द्वीपानाम द्वे, द्वीप कुमारों की दो पल्लोपम की आयु है। शेषाणाम षण्णाम अध्यर्ध पल्लोपमा, बाकी सबकी अध्यर्ध यानी डेढ़ पल्लोपम है। डेढ़ मीन्स वन एंड हाफ। तो ये स्थिति अपने को याद रखनी है। अब कोई भी अगर आपसे पूछे कि भवनवासियों की आयु कितनी होती है उत्कृष्ट आयु, तो फिर असुर कुमारों की तो आपको याद हो गई एक सागरूपम। फिर नाग कुमारों की अपने जो पार्श्वनाथ भगवान के परम भक्त धर्णेंद्र और पद्मावती हैं, उनकी आयु पद्म कीर्ति आचार्य महाराज ने पाशनाहचर्य में, प्राकृत पार्श्वनाथ भगवान की कथा में, चरित्र में, उन्होंने तीन पल्लोपम बताई है। तो उनको अपने को याद रखना है कि उनकी आयु तीन पल्लोपम है। कथा में भी आई और यहां पर भी आ गई सर्वार्थ सिद्ध में, दो जगह एक बात आती है तो फिर याद रह जाती। फिर सुपर्ण कुमार जो है उनकी अर्ध तृतीयानि, तीन में से आधा कम कर लिया तो टू एंड हाफ, ढाई पल्लोपम की आयु है। द्वीपानाम द्वे, द्वीप कुमारों की दो है। और अर्धहीनमिता, और बाकी जितने हैं शेषाणाम उनकी उससे आधी हीन कर लेना, तो दो में से आधी कम करोगे तो डेढ़, वन एंड हाफ हो गया। कहाँ लिखा? वो अर्ध शब्द से निकाला ना। देखिए अर्ध शब्द से त्रिपल्लम में से आधा कम किया तो सुपर्ण का आ गया, सुपर्ण में से आधा कम किया तो द्वीप का आ गया, द्वीप में से आधा कम किया तो शेष का आ गया। ये क्रम है। अब व्यंतर ज्योतिष का स्थिति वचने क्रम प्राप्त सति तदुल्लंघ्य वैमानिका नाम स्थिति रुच्यते कुतः। अब व्यंतर और ज्योतिष का क्रम आ रहा है लेकिन उस क्रम को छोड़कर वैमानिकों की स्थिति बतला रहे हैं, क्यों? तो तयोर उत्तरत्र लघुनोपायेन स्थिति वचनात्, आगे चल करके बहुत शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप से व्यंतर और ज्योतिष की स्थितियों का विवरण हो जाएगा, इसलिए पहले वैमानिक देवों का वर्णन कर रहे हैं। सौधर्म ईशान यो सागरूपमे अधिके, सौधर्म और ईशान कल्प में जो देव हैं उनकी आयु सागरोपम से कुछ अधिक होती है। सागरोपम से नहीं, दो सागरोपम से, क्योंकि सागरोपमे द्विवचन है और सागरोपमे के बाद अधिके लिखा है। तो प्रश्न आता है, व्याकरण का एक प्रश्न है कि ए के बाद अगर अ आता है तो फिर सागरोपमे अधिके हो जाता है, भवांतरेपि ताव ते प्रणव। वो स्वर संधि और विसर्जनीय संधि, इसमें ये खंडाकार वाली स्थिति बनती, तो यहां क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर है द्विवचन मनऊ, ये द्विवचन है। और औ वाला जो द्विवचन होता है उसके सामने अगर अ आता है तो उसको द्वावपि संधि करते हैं, लेकिन बाकी जैसे ए है ये द्विवचन सागरोपमे, कुलम कुले कुलानी, सागरोपमम सागरोपमे सागरोपमाणी, ऐसे रूप बनते हैं नपुंसक लिंग में। तो ये द्विवचन ए वाला द्विवचन है, औ वाला नहीं है, तो इसलिए प्रकृत्या तिष्ठति, जो आगे आया हुआ जो अ है वो प्रकृति यानी जैसा था वैसा का वैसे ही रहता है। तो ये बिल्कुल सही सूत्र है, इसमें कोई संधि करने की कोशिश ना करें कि भाई आप सीख कर आ गए संधि कि अ होता है तो उसका लोप हो जाता है और फिर खंडाकार बन जाता है, तो ये नियम हर जगह नहीं लगता, यहाँ पर अपवाद है। इसलिए सौधर्म ईशान यो हो सागरोपमे अधिके, यहाँ पर अ अलग रहेगा ही, इसमें कोई दूसरा भंग नहीं बन सकता, अ ज्यों का त्यों रहेगा। सौधर्म और ईशान कल्प में दो सागरोपम से अधिक आयु होती है, अधिकतम आयु जो है वो दो सागरोपम से कुछ अधिक होती है, और वो दो सागरोपम से अधिक आयु किसकी होती है? तो जो घातायुष्क जीव होते हैं, माने ऊपर के स्वर्ग की आयु किसी ने बांध ली और फिर बाद में फिर से जब त्रिभाग आया, आयु बंद का समय आया, आयु बंद का समय 8 बार आता है जीवन में। मान लो पहले किसी ने आयु बांध ली, ऊपर के स्वर्ग की आयु बांध ली, उसके बाद आगामी त्रिभाग में फिर आयु में हलचली होती है, हर त्रिभाग में कुछ ना कुछ ऊपर हलचली होती है, ऊपर नीचे। तो उसके बाकी के त्रिभाग में जब अंतिम समय आया तो फिर उसके परिणाम ऐसे हुए कि वो जो ऊपर के स्वर्ग की आयु थी वहां जाने योग्य परिणाम नहीं रहे। देवायु तो नहीं छूटेगी, देवायु तो बंदी है तो बंदी रहेगी, लेकिन अब वहां के योग्य परिणाम नहीं रहे तो फिर वो सौधर्म स्वर्ग या ईशान स्वर्ग में आ जाता है। पर वहां आने पर जो ऊपर की आयु बांधी थी उसमें से आधा सागरोपम बाकी रह जाती है, एक्स्ट्रा रह जाती है। तो फिर वो आयु, ऐसे तो दो सागर की आयु है पहले दूसरे स्वर्ग में, लेकिन जो घातायुष्क है वो आधा सागर और एक्स्ट्रा लेकर के वहां पर उत्पन्न होते हैं, तो ये 2.5 सागरोपम की आयु बनती है उनकी। आकुते ये कहां तक के क्रम चलता है? ये एक अधिकार है, अधिके शब्द जो है ना वो असहस्रारात, सहस्रार स्वर्ग तक के अधिके अधिके लगता रहेगा, जितने भी आयु के उत्कृष्ट विकल्प बताएंगे उसमें अधिक अधिक लगाते रहना होगा 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग के ऊपर घातायुष्क जीव उत्पन्न नहीं होते। सनत कुमार माहेंद्र यो हो सप्त, सनत कुमार और माहेंद्र में 7 साग अधिकान ही बन जाएगा, ये 7 सागरोपम होते हैं और कुछ अधिक रहते हैं 7 से, क्योंकि सप्त जो है बहुवचन है तो सागरोपमाणी रूप बनेगा। ये अधिक सागरोपमे द्विवचन था तो अधिके था, वैसे ही वहां पर अधिकान ही बनेगा। तो सनत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में 7.5 सागरोपम की आयु रहती है। इसके बाद त्रिसप्त नवैका दश त्रयोदश पंचदश भी अवधिकानी, तो अब इतने से और अधिक क्रम से ऊपर ऊपर ले जाना अच्युत पर्यंत, मतलब कम कम हो सकता है, मतलब 84 लाख पूर्व थी, 72 वर्ष थी, नहीं ये तो अवसर्पणी काल जहाँ चलता है वहां पर तो आयु ऊंचाई सब घटती जाती है, वो एक अलग बात है। अभी तो देवगति में तो एकदम ये तो निश्चित बता रहे हैं, वहां पर ये सब चर्चा ही नहीं हुंडा अवसर्पणी की, तो वहां उत्सर्पणी अवसर्पणी है नहीं, तो फिर ये चर्चा वहां हो ही नहीं सकती। फिर क्या है कि अधिकानी तु त्रिभी ही, देखिए ये भी जो है ना तृतीया का बहुवचन है, तो त्रिभी सप्त भी नव भी एकाद इतना जोड़ते जाना है उसमें। पिछली जो आयु कौन सी थी? सात सागर की। तो सात सागर में तीन सागर जोड़ दो तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की आयु हो जाएगी 10 सागर, साधिक 10 सागर। फिर लांतव कापिष्ट की आयु, सात में सात सागर जोड़ दो 14 सागर की आयु हो जाती है लांतव कापिष्ट की। फिर शुक्र महाशुक्र में सात में 9 जोड़ दो कितनी हुई? 7 में 9 जोड़ना है, 16 सागर की आयु हुई। फिर शुक्र महाशुक्र में 7 में 11 जोड़ना है तो 7 में 11 जोड़ने पर 18 सागर की आयु होती है शतार सहस्रार की। और उसके बाद बस यहीं तक, अधिकानी को यहां तक लेना क्योंकि 12वां स्वर्ग है, 12वें के ऊपर अधिकानी नहीं लेना, एकदम एग्जैक्ट लेना। फिर त्रयोदश 13 सागरोपम जोड़ना है 7 में तो 20 सागरोपम की आयु आरण अच्युत, नहीं आरण अच्युत की नहीं बल्कि आनत प्राणत की, तो वह एग्जैक्ट 20 सागर, उससे ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि 12वें स्वर्ग के ऊपर की आयु हुई है। तो वहां अधिकानी वाला वो जोड़ना नहीं है। और उसके पास पंचदश 7 में 15 जोड़ दो तो अच्युत स्वर्ग की, आरण अच्युत स्वर्ग की आयु 22 सागर आती है, जहां से सनत कुमार चक्रवर्ती आए थे, जहां से सुकुमाल स्वामी आए थे, वो अच्युत कल्प है। तू शब्द जो है ना, वो वहीं तक लेने के लिए, 12वें स्वर्ग तक लेने के बाद में अधिक, किंतु अधिक वहीं तक लेना, उसके ऊपर नहीं लेना ऐसा। इसके ऊपर की स्थितियां कितनी आयु की? तो बोले आरणाच्युता दूर्ध्वम, आरणाच्युता दूर्ध्वमी की कई न, आरणाच्युता दूर्ध्वमी कई के न नव सुग्रई वेय केशु विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरण और अच्युत से ऊपर एक एक ही ने नव सुग्रैवे केशु, एक एक सागर से 9 ग्रैवेकों में बढ़ाते जाना। फिर विजयादिशु, इनमें भी एक एक सागर बढ़ा लेना। तो कैसे बढ़ेगा? तो पहले ग्रैवेक में 23 सागर, दूसरे में 24, तीसरे में 25, चौथे में 26, पांचवे में 27, छठे में 28, सातवें में 29, आठवें में 30, और अंतिम ग्रैवेक जो प्रीतिंकर नाम है जिसका, और नवम ग्रैवेक है वो, वहां की 31 सागर की आयु होगी। एक एक ने लिखा ना, एक एक से बढ़ाते जाना। कहां से एक एक बढ़ाना है? आरणाच्युतात, आरण और अच्युत की जो 22 सागर आयु थी वहां से एक एक बढ़ाते जाना है। हाँ, तो 15th and 16th heavens, there the deities are 22 oceans lifespan, and then after that each gravek +1 +1, you have to just calculate like that. The first gravek will be 23, second 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ninth will be 31. And फिर उसके बाद अनुदेश आएंगे, तो अनुदेश में +1, 9 अनुदेश है, वो लेवल उनका एक ही है, ऐसे 9, 8 दिशाओं और एक इंद्रक बीच में, ऐसे 9 अनुदेश है। ये ग्रैवेक तो ऊपर ऊपर थे। ग्रैवेक क्यों बोलते हैं? कि ग्रीवा शब्द से ग्रैवेक शब्द बना है। ग्रीवा मीन्स नेक, ग्रीवा मीन्स नेक। अब जब ऐसे खड़े होते हैं ना अपन पैर फैला के, तो लोक का आकार बनता है, तो लोक के आकार में जो गले वाला स्थान है वो ग्रैवेक वाला स्थान है, इसलिए उसको ग्रैवेक बोलते हैं। ऐसे नाम है ग्रैवेक। और उसके पास अनुदेश है, ऐसे पूरे नौ आठ, मतलब चार दिशा चार विदिशा और एक मध्य में इंद्रक, ऐसे विमान है। अनुदिश अनुसृत्य, दिशम अनुसृत्य अनुदिश, दिशा का अनुसरण करने वाले वो अनुदिश विमान है। और उनके ऊपर फिर अनुत्तर है, अनुत्तर का मतलब जिनके उत्तर में कुछ ना हो वो अनुत्तर, यानी उनके आगे कुछ नहीं है। तो अनुत्तर में चार दिशाओं में एक एक है और बीच में सर्वार्थ सिद्धि। तो वो एक सागर वहां बढ़ा देना उत्कृष्ट आयु, पांच अनुत्तरों की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, या अनुदिशों की 32 है तो अनुत्तरों की प्लस वन 33 हो जाएगी, उत्कृष्ट आयु की बात है। अपरा पल्लोपम अधिकम, अब इन वैमानिक देवों की जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक रहती है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, और फिर आगे आगे के कल्प में यहां की उत्कृष्ट आयु ऊपर वाले की जघन्य आयु होगी, उससे ऊपर वाले की जघन्य आयु यहां की उत्कृष्ट आयु के बराबर होगी, ऐसे क्रम से चलेगा पूरा। नारकाणांच द्वितीयादिशु, अब नारकों की भी यही स्थितियां हैं कि प्रथम पृथ्वी की सबसे उत्कृष्ट आयु जो है वो द्वितीय पृथ्वी की जघन्य आयु है, द्वितीय की जो उत्कृष्ट है तृतीय की जघन्य है, तृतीय की उत्कृष्ट चतुर्थ की जघन्य है, पंचम की जघन्य चतुर्थ की उत्कृष्ट है, ऐसे क्रम से फिर पंचम की उत्कृष्ट षष्ठ की जघन्य है और सप्तम की जघन्य षष्ठ की उत्कृष्ट आयु है 22 सागर, और छठे की जो 33 सागर है वो किसी की जघन्य नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई पृथ्वी नहीं है, ऐसा है। फिर ये नहीं पता चला कि नरकों में जघन्य कितनी होगी, ये तो समझ में आ गया कि आगे आगे ऐसा क्रम चलेगा, तो नरकों में प्रथम पृथ्वी में जघन्य आयु कितनी है, तो बोले 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, प्रथम पृथ्वी में जो सीमंतक नाम का बिल है, 84 लाख नरक होते ना, तो 84 लाख नरक में से प्रथम पृथ्वी में तासु 33 नरक शत सहस्राणी, 30 लाख नरक प्रथम पृथ्वी में होते हैं, पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो 30 लाख नरकों में से जो पहला नरक है जिसका नाम सीमंतक है, जो ढाई द्वीप के ही बराबर साइज का है, इस ढाई द्वीप के बराबर साइज वाला जो पहला नरक है उसमें नारकों की जो स्थिति है उसमें जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, जहां असैनी जीव उत्पन्न होते हैं 10,000 वर्षों में, असैनी जीव तीव्र कषाय करने वाले पाप कमाने वाले 10,000 की आयु में उत्पन्न होते हैं, और बाकी उस बिल में 90,000, ये 10,000 ईयर्स मिनिमम लाइफ स्पैन है नारकों में, और मैक्सिमम जो है उस प्रथम बिल में 90,000 ईयर्स है। तो श्रेणिक राजा का जीव 84,000 ईयर्स की आयु के साथ उत्पन्न हुआ है वहां, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टियों को 84,000 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त नहीं होती, 84,000 वहां की, अच्छा जघन्य आयु उत्कृष्ट नहीं, 84,000 से नीचे की आयु क्षयिक सम्यक दृष्टि जीवों को प्राप्त नहीं होती, और प्रथम पृथ्वी में जो एक सागरोपम की उत्कृष्ट आयु है प्रथम पृथ्वी, तेष्वेकत्र सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाने सत्वानां परास्थिति, ये जो लिखा था ना, तो वहां एक सागर की जो उत्कृष्ट आयु है, तो प्रथम पृथ्वी में एक सागर की उत्कृष्ट आयु भी क्षयिक सम्यक दृष्टियों को प्राप्त नहीं होती, तो उसमें पल्ले का असंख्यात वा भाग घटा करके जितनी राशि रह जाती है काल की उतनी आयु उनकी उत्कृष्ट होती है। पर ये 10,000 वर्ष तो प्रथम पृथ्वी की जघन्य आयु है। भवनेषु च, भवनवासी देवों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। व्यंतराणांच, व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। फिर अधिकतम आयु कितनी है व्यंतरों की, क्योंकि भवनों की अधिक, भवनवासियों की अधिकतम आयु बता चुके हैं, असुर कुमारों की एक सागर, नाग कुमारों की 3 पल्ले आदि, तो व्यंतरों की जगन्नायु बाकी थी, वो बता रहे हैं परा पल्लोपमम अधिकम, एक पल्ले से कुछ अधिक इनकी जगन्नायु होती है, इनकी उत्कृष्ट आयु होती है। जगन्नायु तो सौधर्म ईशान कल्प की एक पल्ले से कुछ अधिक है, पर यहां व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिष काणांश, ज्योतिष के देवों की भी एक पल्ले से कुछ अधिक जगन्नायु उत्कृष्ट आयु होती है। तदष्ट भागो परा, और बोलते हैं कि एक पल्ल के आठ हिस्से कर दो तो जो एक हिस्सा बचेगा, यानी 1/8 पल्ल, वो ज्योतिष के देवों की जगन्नायु होगी, वो असंख्यात वर्ष है। पल्ल के असंख्यात टुकड़े कर दोगे तो भी असंख्यात वर्ष का एक टुकड़ा बनेगा, तो यहां तो आठ टुकड़े कर रहे हैं तो बड़ा असंख्यात है, तो उतनी आयु ज्योतिष के देवों की जगन्य आयु होती है। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरों प्रमाणी सर्वेशाम, लेकिन लौकांतिक देव जो होते हैं उन सब की आठ सागरोपम की आयु होती है। 24 प्रकार के जो लौकांतिक है ना, उन सभी की आठ सागर आयु होती है। सब शुक्ल लेशा वाले होते हैं, सब अभिन्न होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते। और पंच हाथ सोध से शरीर, पांच हाथ ऊंचा उनका शरीर होता है। हाथ जो होता है वो कोनी से लेकर के ये मिडल फिंगर के टिप तक होता है ये हाथ। फिर अरत्नी जो होती है वो लिटिल फिंगर के टिप से लेकर यहां तक कोनी तक, और रत्नी जो होती है वो यहां से लेकर यहां तक होती है। ऐसे मुट्ठी बांध दो तो छोटी उंगली के ऊपर वाली जो हड्डी आएगी यहां से यहां तक, ये रत्नी है। इति तत्वार्थ वृत्तो सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायाम चतुर्थ अध्याय, ये तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। चतुर्णिकाय देवानाम स्थानम भेदाः सुखादिकम परापर स्थितिर्लेश्या तुर्याध्याये निरूपितम। चार निकाय के देवों के स्थान, उनके भेद, उनके सुख आदि, उनकी उत्कृष्ट जगन्य स्थितियां, उनकी लेश्याएं इस चौथे अध्याय में निरूपित की गई, अर्थात इसमें वर्णन उसका किया गया है। जैनम जयतु शासनम। इति चतुर्थोध्याय।